ओम शांति। अचल अडोल और एक स्थिति, जब हम मधुबन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा को शांति स्तंभ के रूप में अचल अडोल स्थिति के रूप में देखते हैं, तो हम सभी का लक्ष्य यही है, ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल एक स्थिति बनाना। ब्राह्मण जीवन में एक बात सदा हमें याद रखनी है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा होती है, तो हमें बाबा के पास आने के बाद कैसे भी साधना करनी पड़े, साधना करते हुए अचल अडोल एक स्थिति बनानी ही है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हमारा हो, तो ऐसी स्थिति बनाने का सीक्रेट क्या है? गुह्य राज उसका क्या है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रसाद सभी करते हैं, कुछ एक को उसमें सफलता मिलती है और कुछ एक को नहीं मिलती है, क्योंकि गुह्य राज को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए उसके दो सीक्रेट हैं। पहला सीक्रेट है आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत दिल से अभ्यास करना, जिससे हम अपने देहभान की जो दलदल है उस दलदल में रहते हुए उससे न्यारा अनुभव करते हैं। और दूसरा सीक्रेट है स्वमान का अभ्यास करना, उससे क्या होता है, हमारी मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की होती है, ईश्वरीय नशे में चूर रहती है और परम धाम में हमें ले जाकर बाबा के सामने बिठाने का काम करती है। अगर समानधारी हम नहीं बनते हैं तो हमारा मन और बुद्धि इसी दुनिया में भटकता रहता है। और तीसरी बात, बाबा के पास बैठने के बाद लंबे समय तक हमें बैठे रहना है, उसके लिए दिल से बाबा के प्रति प्यार हमारा बढ़ता रहे, ये तीसरी बात है। और एक स्थिति का अनुभव करने के लिए चौथी बात है बाबा जो सर्व रसों का भंडार है उस भंडार से विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त करते रहें तो परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति ऐसी अचल अडोल बनती जाती है। अंगत का गायन है अचल अडोल स्थिति के लिए। अंगत का गायन है अंगत रस्ते में बैठा था रावण घमंडी आया कहते हैं बंदर हट जा रस्ते से। उसने कहा रावण जी मेरा पैर हिला के दिखाओ जरा। तो रावण उसका पैर हिला नहीं सका तो उसका नाम क्या था अंगद। जिसने अंग को भुला दिया आत्मा के वाहन में टिका दिया उसका बुद्धि रूपी पैर रावण माया हिला नहीं सकती है। इसलिए इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। हर मुरली में बाबा आत्मा का पाण दोहराते हैं वो सुप्रीम टीचर बाबा हैं। वो यही हमें समझाना चाहते हैं अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो इस पहले पाठ पर आपकी पकड़ होना जरूरी है बुद्धि की क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का देह का बान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है उसको हमने हटाना है और 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का बान रहे वो भी हमें घर पहले जाने के जुटाना है। कहने का भाव है 84 जन्मों का ये होमवर्क है और हमने इसको पूरा करना है। और संगम युग हाथी चला गया पूंछ की पूंछ बाकी है थोड़ा समय हमारे हाथ में है इसलिए पूरी लगन के साथ विधि पूर्वक हमें इस पाठ को पक्का करना होगा। विधि बड़ी सरल है एकांत में बैठकर आत्मा को दिव्य नेत्र से देखना जरूरी है। इस चेहरे को हम आईने में इन स्थूल नेत्रों से देखते हैं तो आत्मा का दर्शन आत्मा की आंख से ही ज्ञान के दर्पण में हमें करते रहना है कि मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा इसलिए हूं क्योंकि उसको देखने के लिए विशेष नेत्र की आवश्यकता होती है और गजब का सितारा इसलिए हूं क्योंकि उस छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाड़ भरा हुआ है जो कभी मिटता नहीं कभी घिसता नहीं। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा का साक्षात्कार आत्मा का दर्शन करते रहें। जब तक खुद का दर्शन नहीं करते हैं तब तक खुदा का दर्शन नहीं हो सकता है। जब तक खुद की स्मृति नहीं होती है तब तक खुदा की स्मृति भी हमें नहीं रहती है। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा को देखते रहें और उसमें स्थित होते रहें, उससे आत्मा के जो निजी सात गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, उन गुणों का हम बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाते हैं और आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल बहुत अच्छी तरह से विकसित होता जाता है। इसलिए एक सेकंड में जब भी चाहे एक सेकंड में हम अपने असली भान में, सत्य भान में, दिव्य स्वरूप में टिक जाएं, उतना अभ्यास हमें करते जाना है। जितना आत्मा का अभ्यास सहज होता है, नेचुरल होता है, निरंतर होता है, उतना बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर होती है। क्योंकि देह का भान होने से बुद्धि देह की दुनिया में भटकती है, आत्मा का भान होते ही ट्रैक्ट बदल जाता है और बुद्धि हमारी आत्मा का घर, आत्मा के पिता के तरफ ऑटोमेटिक जाने लगती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से आत्मा के पार्ट को कोट कोट के, घोट घोट के, रट रट के हमने पक्का करना है। ये स्थिति जितनी हमारी नेचुरल होगी, उतनी स्थिति हमारी अचल बनती जाएगी। जब आत्मा का भान भूल जाते हैं तो स्थिति भी हमारी हिल जाती है। इसलिए मधुबन में आप सभी आए हैं, एकांत का स्थान है, तो इसलिए एकांतवासी बनकर आत्मा के पाठ को बहुत पक्का करना है। जितनी भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी श्रेष्ठ बनाई स्थिति, इसका क्या गुह राज है, जवाब एक ही मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद हमने आत्मा के पाठ को बहुत घोट घोट के पक्का किया है, तब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुए हैं। और हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं, हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, ये आत्मा का पाठ तो नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसके कारण जो समय और संकल्प हमें उसके अभ्यास के लिए देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं और हमारी स्थिति लड़खड़ाती जाती है। दूसरी बात, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए स्वमान का अभ्यास अच्छी तरह से करते रहना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा शुरू दिन से स्वमानधारी होकर रहें, मैं नंबर वन नारायण बनने जा रहा हूं, सारे संसार के जो प्रजा हैं, उस प्रजा का मैं पिता हूं, इस समान में शुरू से बाबा रहें, और समान में रहने से नारायणी नशे की अनुभूति करते रहें, क्योंकि ये नशा हमें अपनी संपूर्णता के निशाने की ओर तेज से आगे बढ़ाता जाता है। इसलिए समान का टाइटल हमें सिलेक्ट करना है और उस टाइटल की में स्थित होने का अभ्यास करना है। सभा में जो भी बैठे हैं, बहुत रॉयल आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, तो बाबा की एक ही चाहना हम सभी से है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूं, वो बाबा की आस अगर हमें पूरी करनी है तो उसके लिए राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है। तो आत्मा रूपी राजा को बाबा ने ये समान का सिंहासन दिया है, उस सिंहासन पर हमें डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करे, हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत 63 जन्मों की तपस्या के आधार पर ये दिया है टाइटल, बड़े बड़े सम्मान के टाइटलों से नवाजा है। उस टाइटलों को हमने दिल से स्वीकार करना है और उसका स्वरूप बनना है। केवल उसको लिखने से काम नहीं होगा, उसमें स्थित होना है और उसका स्वरूप बनना है, तो नारायणी नश्य की अनुभूति हमें ऑटोमेटिक बनती जाएगी। ईश्वर की पालना में हम सभी पल रहे हैं, तो बाबा चाहता है हरेक बाबा के बच्चे के चेहरे पर ईश्वरीय नश्य की झलक और फलक स्पष्ट दिखाई दें, ईश्वरीय खुशी की झलक स्पष्ट दिखाई दें। लेकिन उसके लिए हमें जो भी समान के टाइटल बाबा ने दिए हैं उसमें से एक दो टाइटल सिलेक्ट करना है, उस पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है और उसमें स्थित होना है। तो जैसे टाइटल ये हमारा सिंहासन है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, या विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, योगिनी हूँ, तपस्विनी हूँ, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, ये सिंहासन है। तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, उस सिंहासन पर आप बैठ गए, उसमें स्थित हो गए, तो धीरे धीरे आपका बोलना, सोचना, कर्म करना, चलना, ये सब कुछ बदल जाएगा और एक दिन वो टाइटल आपके जीवन का अभिन्न अंग अनुभव होगा। इसलिए हमें समान के टाइटल में स्थित होना है, क्योंकि सतयुग में ऊपर से परम धाम से जैसे नीचे आएंगे और राजा महाराजा का, रानी महारानी का सिंहासन जब मिलेगा, तो आपके चेहरे पर वो रुहाव, वो मस्ती, वो नशा होना जरूरी है। वो अभी हमने आत्मा में धारण करना है। इसी सभा में गुप्त रूप में होनहार राजे महाराजे बैठे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। ताली तो बजाओ भाई। इसी सभा में है बहुत बड़े बड़े ऊंची पोजीशन वाले राजे महाराजे बैठे हैं, लेकिन सतयुग में, त्रेता युग में जब सिंहासन मिलेगा, वो नशा, वो मस्ती हमारे चेहरे पर अभी हमने धारण करना है, उसके संस्कार को हमने अभी आत्मा में भरना है। तो स्वयं ही स्वयं को मान देना अर्थात समान में स्थित होना, ये अहंकार नहीं है, ये वास्तविकता है, ये शुद्ध नशा है। इसलिए हमें इसमें स्थित होना है और इसको अच्छी तरह से अनुभव भी करते जाना है, क्योंकि समान में स्थित होने से मन बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे में भरपूर होती है और हल्की फुल्की होती है और ऊपर जाकर बाबा के पास हमें बिठा देती है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ये घटिया दुनिया में रखा क्या है, हमने इसको 5000 वर्ष यूज किया है, अभी हमें अपनी अलौकिक दुनिया में विचरण करना है। लेकिन उसके लिए हमें ईश्वरीय नशे में मस्त रहने का अभ्यास करना है। तीसरी बात, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हमारे दिल में बाबा के प्रति असीम प्यार बढ़ता रहे। आप कहेंगे हमारा प्यार तो बाबा से है इसलिए यहां बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस स्थिति बनाने के लिए हड्डी प्यार, जिगरी प्यार होना जरूरी है, जैसे हमारी दादियों में बाबा में था, उनके रोम रोम में, उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार समाया हुआ था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। ऐसा हड्डी प्यार हमारे दिल में उस बाबा के प्रति होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बाबा से ठगी करते हैं, दिल के टुकड़े हजार हो गए, कहीं एक कहां गिरा, कोई कहां गिरा, हम दुनिया में प्यार बटा हुआ हमारा होता है, माँ से प्यार, बाप से प्यार, घर से प्यार, कार से प्यार, इससे प्यार, बाबा से भी हमारा प्यार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो बटा हुआ प्यार है उसको बटोर कर हमें एक बाबा पर केंद्रित करना है। ऐसा दिल का सच्चा प्यार हमारा हो तभी हमारी बुद्धि एक बाबा पर सदा टिकी हुई रहेगी। हमने बुद्धि को बहुत भटकाया, द्वापर युग से छोटी मोटी प्राप्तियों के लिए बहुत भटकाया, अभी हमने ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर बुद्धि को बिठाना है, लेकिन उसके लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई वैभव ऐसा न हो जहां हमारी बुद्धि बार बार जाती है, अगर है तो उसको हमने वहां से हटाना है और बाबा पर बिठाना है, ये चेक करना है। हम सभी की रेस योगाभ्यास में है। अन्य तीन सब्जेक्ट उसके सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन रेस हमारी योगाभ्यास में है और इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन हमें विनर बनना है। लेकिन ऐसे प्राइज विनर बनने के लिए अचल अडोल स्थिति बनाना जरूरी होगा और उसके लिए दिल से हमारे प्यार बाबा के तरफ ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि प्यार एक दुनिया में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की जो दूरी है उस दूरी को समाप्त करके केवल आमने सामने ही नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति करता है। इसलिए ऐसा प्यार बाबा के तरफ हमारा बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी बेघर हैं, ये घर भी किराए से लेकर बैठे हैं, बेघर माना बेघर। हमारे पास केवल दिल का सच्चा प्यार की पूंजी है, वो हमने बाबा को सौंपना है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, मुट्ठी चावल था, तो हम सभी सुदामा हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, केवल दिल का सच्चा प्यार की पूंजी बची है, वो हमने बाबा को सौंपना है। तो सुदामा, अच्छा दाम मिल जाएगा, 21 जन्मों की बादशाही हमें मिलेगी, वर्तमान समय भी अखूट खजाने बाबा हमें देते रहेंगे, तो ये सौदा हमें बाबा के साथ करना है। लेकिन हम देखते हैं 83 जन्मों का पाड़ बजाकर हम यहां बैठे हैं, कई आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव और निगेटिव अकाउंट है, उसको हमने चुक्त करना है। जो हिसाब का किताब है इसको हमने जीरो करना है घर वापस जाने के पहले। इसलिए अगर कहीं थोड़ा सा भी बुद्धि का आकर्षण होता है वो खत्म हो जाए, उसके लिए बाबा से ही सर्व रसों का भंडार अनुभव करके सर्व प्राप्तियां करते रहें। बाबा ने कहा है एक सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होगी, और 24 घंटे बाबा कंपनी देने के लिए तैयार है। बाबा कहते यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। भगवान 24 घंटे कंपनी देने के लिए सामने से तैयार हैं। हमने ये मौका नहीं छोड़ना है, इसका पूरा लाभ लेना है। उसके लिए बाबा को हमने फ्री नहीं छोड़ना है। अब होता क्या है, बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करते हैं, घंटा दो घंटा के बाद हमें ये बोर होने लगता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, उसको निवने चाहता है वो। इसलिए सारे दिन भर में बाबा की याद में निवनेस अनुभव करने के लिए बाबा को विभिन्न संबंधों के द्वारा याद करते रहें, बाबा से रस विभिन्न प्रकार के अनुभव करते रहें, तो योगाभ्यास में हमारी रुचि बनी रहेगी और हम माला माल होते जाएंगे। इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा को हमने फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा में वो ताकत है, बाबा में वो क्षमता है सर्व संबंधों की अनुभूति करने की, कराने की बाबा में क्षमता है। इसलिए हमें सारे दिन भर में बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में अनुभव करते जाना है। सबसे पहले अमृत वेले जैसी आंख खुलती है बाबा को हमें परम पिता के रूप में अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर उनकी गोदी में बैठना है, गोदी में खेलना है और पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करते जाना है। जैसे बाबा के सेवा केंद्र पर आते हैं बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करना है। दीदी जो मुरली सुनाती है वो कहाँ से आई है, मधुबन में बाजे मुरली। तो ज्ञान का सागर बाबा है, वो ज्ञान के सागर की, ज्ञान की गंगा ब्रह्मा मुख से बहते बहते दीदी के मुख से बहते बहते आपकी आत्मा की तरफ आ रही है। आप ज्ञान स्नान कर रहे हैं तो सुप्रीम टीचर बाबा को अनुभव करते रहें और मुरली का आनंद लेते हुए बाबा को याद भी करते रहें। टीचर के रूप में टीचर का हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहें। उसके लिए जो टीचर होमवर्क बताते हैं वो होमवर्क हमें करके ही आना है, तो टीचर की दुआएं हमें मिलती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं बाबा के रूम में बैठकर सद्गुरु के रूप में बाबा को अनुभव करना है, सद्गुरु की दृष्टि से अनेक वरदान लेना है और सद्गुरु का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करना है, और सद्गुरु ने दिया हुआ जो मंत्र है मनमना भाव उसका अजापा जाप सारे दिन भर में करते रहना है। उनकी ही छत्र छाया में चलते रहे, पलते रहे और मास्टर सद्गुरु स्वयं को अनुभव करते रहे। चौथा संबंध बाबा के हम खास बच्चे हैं, आम बच्चे नहीं हैं, खास बच्चे माना खास उल्टा है सखा, जो सखा के रूप में दोस्त के रूप में भगवान को अनुभव करते हैं वो भगवान के खास बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि अंतिम समय हमें कोई भी मदद नहीं करेगा, किसी में ताकत भी नहीं है मदद करने की, वो केवल हमारा दोस्त नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आएगा मदद करने के लिए। लेकिन उसके साथ अच्छी तरह से बजाओ ना जरा ताली, कमाल है। तो उसके साथ हमने बहुत गहरी दोस्ती करना है, पवित्रता के प्रमेय से जो हमारी दोस्ती उसके साथ हमने की है उसको बखूबी निभाना है, उसमें थोड़ी भी हेरा फेरी नहीं करना है। तो खुदा के साथ दोस्त के रूप में अनुभव करें, उनके साथ नाचे गाएं, खेले खाएं, बहुत रास रचाएं, दिल का हाल उनके साथ करते हुए चिटचाट करते हुए स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करें। पांचवा संबंध बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है, कुमार हो कुमारी हो कोई भी हो, बच्चे के रूप में बाबा को अनुभव करना माना बाबा को वर्षा देना। क्योंकि ये बच्चा मुझे स्मशान तक ले जाएगा, लेकिन ये बच्चा तो मुझे घर तक ले जाएगा और सतयुग की राजधानी में भेजेगा। तो इस बच्चे से हमारा बहुत समीपता की अनुभूति हमें करना है, उसको उसका वर्षा देना जरूर है। फिर छठवा संबंध है, बाबा मेरी माँ है। लोग कहते हैं दुनिया में माँ की ममता को भूलना बहुत मुश्किल है। जिसने मुझे पेट में पाला, उसकी कोख में मेरी शरीर की रचना हुई, जिसने मेरे लिए कई रातें नींद नहीं की, क्या उसने नहीं किया जो कोई नहीं कर सकता, वो उसने मेरे लिए किया। अभी देखो 83 जन्मों की माँ को तो हमने छोड़ दिया, अभी 84 जन्म की माँ में फंस गए, भाई इसको भी तो छोड़ो ना। लेकिन उसके लिए हमें बाबा को अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना होगा, तो ऑटोमेटिक माँ का जो प्यार है ममता है वो निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और बाबा का प्यार माँ के रूप में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाएंगे। सातवां अनुभव है, बाबा मेरा साजन, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। तो बाबा को हमने सजनी के रूप में जरूर अनुभव करना है, क्योंकि बाबा को हमने हाथ दिया है, जीवन उसके हाथ में सौंपा है और उसको साजन के रूप में हमने स्वीकार किया है। इसलिए दिल का सच्चा प्यार हमें बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। बाबा तो कहते हैं मैं आपका साजन, आप मेरी सजनी, मुझे पसंद है, कबूल है, लेकिन ध्यान रखना मेरी शर्त है, आपके दिल तख्त पर कोई तीसरा बैठ गया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा, बता रहा हूँ। आपके तीसरे नेत्र में मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई तीसरा बैठ गया तो आपका तीसरा नेत्र काम करना बंद करेगा, ये मेरी शर्त है। तो हमने बाबा को साजन सजनी के रूप में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। आठवां संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है, सर्वोच्च रक्षक है। हर कोई चाहता है कोई मेरा बैकबोन हो, किसी का हाथ मेरे सिर पर हो, तो सर्वोच्च रक्षक बाप का हाथ जब हमारे सिर पर होता है तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। क्योंकि राजा महाराजा बनने के लिए पहला गुण आवश्यकता है निर्भयता, वो हमें तब अनुभव होता है जब सर्वशक्तिवान का हाथ हमारे सिर पर अनुभव होता है। निडर होकर निर्भय होकर हम चलते हैं और ऐसी स्थिति अनुभव करते जाते हैं। नवा संबंध है, बाबा को सर्जन के रूप में अनुभव करना है। बाबा क्योंकि हम देखते हैं पुराना संस्कार परिवर्तन करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कभी कभी हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी बाबा को हमने बुलाना है, बाबा आओ सुप्रीम सर्जन बनकर ये जो मेरी पुरानी बीमारियां हैं उसकी सर्जरी कर दो, मुझे इससे मुक्ति दिला दो, बाबा सर्जरी करेंगे। जैसे लौकिक में डॉक्टर को ऑपरेशन के समय सरेंडर होते हैं, वैसे सुप्रीम सर्जन को भी हमने बुद्धि के द्वारा सरेंडर करना है, तो बाबा उसकी सर्जरी करते हैं और उस पुरानी बीमारी से हमें मुक्ति दिलाते हैं। और दसवां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है। जब भी डबल माइंडेड होते हैं या जब भी दुविधा में होते हैं, बाबा को गाइड के रूप में पुकारिए, बुलाइए। दुनिया में जो गाइड होते हैं उनको तो कल का भी पता नहीं होता है और कोई ना कोई उनका स्वार्थ होता है। ये गाइड तो तीनों कालों को जानने वाला है और निस्वार्थ गाइड है। अभी से ये संबंध हमें अनुभव होगा तो अंतिम समय आप याद रखना, बाबा हमें गाइड बनकर टचिंग देंगे, लिटरली टचिंग देंगे। बच्चे इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, बच्चे ये नहीं करो, ये करो, ऐसी हमें मदद करेंगे। अंतिम समय विनाश के समय भी मदद करेंगे, लेकिन अभी से हमारा कनेक्शन अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, तो उस समय भी बाबा की पालना गाइड के रूप में हमें अच्छी तरह से मिलेगी। और ग्यारहवां संबंध है, बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। एक का डर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम छोटी मोटी गलती करते रहते हैं और पाप कर्म हमारे बनते जाते हैं। तो एक का डर, वन डर फुल, एक का डर फुल होगा धर्मराज के रूप में तो कोई भी गलती हमारे से नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से हम कमाई करते जाएंगे और माला माल होते जाएंगे। कहने का भाव है, सारे दिन भर में हमने बाबा को यूज करना है और बाबा से खजाने लूटने हैं, क्योंकि खुद में और खुदा में खो जाना हमें आता है तभी खजाने हमें मिलते हैं, हम माला माल हो जाते हैं। तो इन बातों को हमें अभ्यास में लाना है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है। कौन सी? पहली सावधानी ये रखना है, योग और ज्ञान, योग और सेवा का बैलेंस हमें जरूर रखना है। हम सवेरे शाम थोड़ा सा योगाभ्यास जरूर करते हैं और जब सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं योग को किनारे रख देते हैं, और जब रात्रि को देखते हैं चार्ट को चेक करते हैं तो हमें पश्चाताप होता है कि सारा दिन मेरा ऐसा ही गया, योग मेरा इतना अच्छा नहीं रहा। इसके लिए योग और ज्ञान का बैलेंस रखने पर विशेष ध्यान देते रहें। दूसरी बात, साक्षी दृष्टा स्थिति की अनुभूति सारे दिन भर में अनुभव करते रहे। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर इस सारे संसार के बेहद नाटक को साक्षी होके देखते हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई प्यार कर रहा है, साक्षी होके देखते हैं, हमें अपने पार्ट को भी और सभी के पार्ट को सूक्ष्म वतन वासी बनकर या परमधाम निवासी बनकर देखना है। तो साक्षी दृष्टा बनकर अभ्यास करेंगे तो बाबा को साथी अनुभव कर सकेंगे। जितना साक्षी उतना साथीपन की अनुभूति करेंगे और हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी। और उसके साथ ये ध्यान रखना है, जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देकर स्वयं को हल्के अनुभव करना है, क्योंकि आजकल इस कंप्यूटर एज में हर एक के दिमाग में एक ही बात बैठी रहती है, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी तो हम हैं, जितने बिजी हैं उससे और कई गुना बिजी होने वाले हैं भविष्य में। लेकिन बिजी रहते हुए हमें इजी रहने का अभ्यास करना है। वास्तव में ये कला है, इस कला को हम हासिल करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्लोगन याद रखना है, मैं कुली नहीं हूँ, मैं रॉयल कुल वाला हूँ। कुली हमेशा अपने सिर पर बोझ ढोता रहता है, जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो कभी भी बोझ नहीं ढोते हैं। हमें जो भी जिम्मेदारी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी है बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम हल्के अनुभव करना है। प्रकाश मणि दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक मधुबन में रहा और कई बातें मैंने दादी जी के जीवन से सीखी हैं। एक बार दादी जी से मैंने सवाल पूछा था इंटरव्यू लेते हुए, दादी जी आप इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लाइट रहती हैं, हल्की फुल्की रहती हैं, कभी मैंने आपके चेहरे पर टेंशन नहीं देखा, हमेशा हल्की फुल्की रहती, इसका राज क्या है? तो दादी जी ने कहा था, देखो आतम भाई, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ, करण करावन हार बाबा हैं, मैं केवल कठपुतली हूँ, मेरी रस्सी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में है, जैसे बाबा न चाहता है वैसे मैं सेवा करती हूँ, निमित्त समझती हूँ इसलिए हल्की रहती हूँ। दूसरी बात, दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ सदा रहते हैं, एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में रहते हैं और दूसरे कंधे पर शिव बाबा सर्वशक्तिवान मेरे साथ रहते हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो दुनिया के सबसे पावरफुल सपोर्टिंग फोर्सेस हैं, वो मुझे मदद करते हैं और कोई भी समस्या होती है चुटकी से पार हो जाती है, इसलिए मैं सदा हल्के रहती हूँ। तीसरी बात, नथिंग न्यू का पाठ मेरा सदा नेचुरल पक्का रहता है, कोई भी दर्श आता है नथिंग न्यू मैं अनुभव करती हूँ, अच्छा दर्श है मेरे अच्छे कर्मों का फल है, न अच्छा है तो मेरे न अच्छे कर्मों का फल है, मुझे उसको स्वीकार करना है। और जब नथिंग न्यू का पाठ पक्का होता है तो हर परिस्थिति में हर ड्रामा के दर्श देखते हुए मैं स्वयं को अचल अडोल रखती हूँ, अस्थिर रखती हूँ, बुद्धि मेरी चलायमान नहीं होती है। तो कहने का भाव है, हमें जिम्मेदारी का बोझ भी बाबा को देना है, हल्के सुधा अनुभव करना है। और दूसरी बात, एक तरफ बाबा से तो हम शक्तियां लेते रहते हैं और दूसरे तरफ शक्तियों का जो लीकेज होता है व्यर्थ संकल्पों के द्वारा, नेगेटिव संकल्पों के द्वारा, वो हमने लीकेज स्टॉप करना जरूरी है। उसके लिए एक धारणा हमारे दिल में रखना है, हर आत्मा के प्रति मेरे दिल में सदा शिव भावना और कल्याण की भावना पनपती रहे, किसी एक के भी प्रति अशुभ भावना अकल्याण की भावना नहीं होगी तो व्यर्थ संकल्प और निगेटिव संकल्प से हम फ्री रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति हमारी अचल डोल बनती जाएगी। ओम शांति। अभी चंद घड़ियों के लिए हम पावरफुल योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, बिल्कुल अच्छा लडोल बन के स्थिति में बैठकर सुंदर अनुभूति हम करेंगे। ओम शांति। इसदेह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हूँ। आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। मज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओ सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। सारा संसार जिसके गीत गाता है वो भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का प्रकाश मज आत्म ज्योति से चहुओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर, ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार, चंद्र, सूर्य, तारा गण, सीधी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, मोज आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यह, ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा, मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं।
शिकिल दे बच्चे हैं। मैं बेहद खुश हूं, मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिमान निराकार भगवान साकार रूप में मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा तन द्वारा मुरली के माध्यम से मुझ आत्मा को मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मेरे नैनों के नूर बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। मैंने दिए हुए मन मनाभव के मंत्र का जाप करते रहो। सचमुच
मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओह मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण आधार सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट, और खुशी से भरपूर अनुभव कर रहे हो। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनों में पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, और इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तिशाली सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रहे हैं, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक, मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।